તારીખ 17/12/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 223 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 91.
सामान्य ज्ञान जो है
जी,
सामान्य ज्ञान जो है वो तो व्यक्ति विधान रूप ज्ञान है, तो व्यक्ति है। तो अगर हम ऐसा प्रयास करें कि हम हमारा सामान्य ज्ञान को ही पढ़कर पकड़ने का कोशिश करें, सतपुरुष को पहचानने के झंझट में क्यों जाए? अगर ऐसा कोई विचार करे तो क्या वो पकड़ सकता है?
ठीक बात है। ऐसा है कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव भी वो कर सकता है कि जिसको स्वरूप की पहचान हो। वो स्वरूप की पहचान होने से स्वरूप लक्ष्य होता है। जिसको अपना स्वरूप लक्ष्य में हो वही ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करके, ज्ञान विशेष का तिरुभाव करके अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है। और स्वरूप की पहचान और लक्ष्य उसको होता है कि जो सत्पुरुष की पहचान जिसको होती है उसको होता है। ये क्रम है ऐसा। तो हमें कार्य तो करना है लेकिन क्रम तोड़ के करना है। कैसे होगा? हम गेहूं लाए हैं, हमारे पास चूल्हा भी है, अग्नि भी है, लेकिन आटा बनाए बिना और आटा का पिंड बनाए बिना रोटी बनानी है, कैसे बनेगी? बन सकती है क्या? तो कि गेहूं की रोटी बनती है, रोटी किसकी बनती है? कि गेहूं की बनती है। किस पर बनती है? कि चूल्हे पर बनती है। ठीक है, गेहूं भी है चूल्हा भी है, बना लो रोटी। गांव को गेहूं को साफ सुथ करके आटा बना के, आटा का पिंड बना के, आटा में पानी डाल के, ऐसा नहीं चलता है, डाल के पिंड बना के फिर उसको बेलन से रोटी कच्ची बना करके फिर पक्के बनेगी। उतना क्रम है उसका। उस क्रम तोड़ के अगर कोई रोटी बनाना चाहता है तो एक भी रोटी बनने वाली एक मामूली काम है जो रोजाना हमारे घर में होता है। मामूली काम की भी व्यवस्था है तो परमात्मा बनने जैसा महान कार्य की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात आप कैसे सोच सकते हो? आपके यहां आपका जो पेशा है केस पुटअप कर देता है तो इसका भी कोई सिस्टम होता है। ये बात पहले कहना चाहिए, बाद में ये बात कहनी चाहिए, बाद में ये बात कहनी चाहिए, बाद में वो बात कहनी चाहिए, इस तरह से अगले दिन वहां ले जाना चाहिए। हर काम की सिस्टम होती है। तो ये तो जगत का सर्वोत्कृष्ट कार्य है कि एक पामर प्राणी जगत में परिभ्रमण कर रहा है उसको उठा करके तीन लोगों का नाम बनाना है। इतना महान कार्य की कोई सिस्टम नहीं हुए और वैसे ही काम हो जाए, ऐसे कोई काम नहीं होता है। तो यही तो बता रहे हैं कि परमात्मा को निर्देश के रूप से चिंतन करने से ऐसी नहीं होती नहीं है, ऐसी एकाग्रता आती नहीं है, परमात्मा में बनी नहीं सकता है। इसलिए जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसा देहधारी परमात्मा यह पराभक्ति का परम कारण है, यह पराभक्ति का एकमात्र कारण है। यहां से ही जो कुछ हो सकता है वो हो सकता है। 194 पत्र में सारे लंबे चौड़े पत्र का तात्पर्य निकालते हुए ये क्या लिखते हैं?
समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, जबकि बात
बिल्कुल कॉमन सेंस की है, जैसे गवार होता है उसको भी दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो मेडिकल स्टोर में सीधा नहीं जाता, उनको पता नहीं कि दवाई तो मेडिकल स्टोर में मिलती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाता है। कुछ नहीं बुझती तो सामान्य आदमी को भी होती है, और हम तो रहे बुद्धिमान, क्या मानते रहे हमको बुद्धिमान, क्या हम तो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कुछ भी बुद्धि नहीं चलाई कभी, क्या हम कहा जाना चाहिए, ये गलत नहीं होता। ऐसा देहधारी परमात्मा वह पराभक्ति का परम कारण है, वह ज्ञानी पुरुष के सर्वचरित्र में ऐक्य भाव का लक्ष्य होने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का ऐक्य भाव होता है। इस ज्ञानी उसके सर्व चरित्र में ऐक्य भाव का लक्ष्य होना, ये क्या चीज है कि जिसमें दो पड़ा मालूम नहीं पड़े, अंतर नहीं मालूम पड़े, उसको ऐक्य भाव कहते हैं, जिसमें द्वैत नहीं रहे और जिसके प्रति अद्भुत प्रेम रहता है, अद्भुत भक्ति रहती है, वहां द्वेष नहीं रहता, वहां लोपना नहीं रहता है। हम हमारे लिए करते हैं या दूसरे के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, वो गिनती वहां नहीं रहती है। यह शब्द प्रयोग किया ज्ञानी पुरुष, पहले क्या था, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है वो परमात्मा है। अब कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार तो त्रिलोकीनाथ को भी है, तीर्थंकर देव को भी है, इसकी बात चल रही है कि नहीं है, इसकी बात नहीं चल रही है, यह बात ज्ञानी पुरुष की चल रही है। जो ज्ञानी पुरुष है उसके सर्व चरित्र में, उसके सर्व कार्य में, उसके सर्व परिणाम में अंतर नहीं लगे, ऐसा क्यों, ये बात नहीं उठे। ऐसा लक्ष्य हो जाने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का भी ऐक्य भाव होता है, अनुभव करने लायक चीज होती है। पराभक्ति उत्तम भक्ति, तो इसकी सीमा क्या है, असीम भक्ति होती है, इसकी सीमा कोई होती, इसकी कोई सीमा हो ही नहीं सकती। तो उसमें क्या होता है, ज्ञानी पुरुष के सभी चारित्र में कहीं भी ऐसा क्यों ये नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है। तो ज्ञानी पुरुष को अपने स्वरूपाकार परिणाम के रूप में देखता है, बाह्य अंश के रूप में नहीं देखता है। प्रश्न तो उसको उठता है कि जो इसका बाह्य अंश को देखता है उसको होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का बाह्य अंश हो, इनके जो स्वरूपाकार परिणति है, जो प्रधान परिणति है, जो परिणाम का मुख्य अंग है, और बाह्य अंश को बिल्कुल नगण्य निग्लेक्ट करने लायक होता है, बहुत ऊपर का होता है, बहुत अल्प रूप होता है, बहुत निरस्त रूप होता है, तो उनको निकाल देते जल में से, तो जो इस स्वरूपाकार वृत्ति का विषयभूत परमात्मा है और वो स्वरूपाकार वृत्ति है वही दिखती है और उसमें ऐक्य भाव होता है, ऐसा मैं वहां जीवन उत्तम भक्ति है और वही भक्ति निर्मलता को ले आती है, मलिनता को छुड़ा देती है, मलिनता का नाश करती है, निर्मलता को उत्पन्न करती है। ठीक है, पर प्रेम प्रभाव बड़े प्रभु से, प्रभु मैंने ज्ञान ही कहा, प्रभु मैंने वो प्रभु ने जो मंदिर में विराजमान है वो नहीं, पर प्रेम प्रवाह बड़े प्रभु से सब आगम बेदसु उदस है। उनको निर्मलता उतनी आएगी, आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, कि आगम पढ़े तो समझ में आए, नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आए। सब आगम का भेद रहस्य, भेद माने आगम का रहस्य उनके हृदय में प्रकाशमान हो जाता है, नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है। यही पराभक्ति है। और कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष चतुर्थ गुण स्थान वाले होते हैं और परमात्मा तीनवें चौथे गुण स्थान वाले या सिद्ध भगवान होते हैं, ऐसा अंतर है ही नहीं। देखो, ऐसा अंतर है ही नहीं, लेकिन सिद्धांत में तो है ना, आगम में तो है ना, सिद्धांत तो आगम में होता है, जिनागम में होता है, तो आगम में होता होगा, अध्यात्म में नहीं है। क्या आगम में होता होगा लेकिन अध्यात्म में नहीं है, और आगम और अध्यात्म विरोध भी नहीं है। क्या आगम और अध्यात्म विरोध नहीं है, इसलिए नहीं है कि आगम का आश्रय भी अध्यात्म में ले जाने का होता है, आगम आगम के लिए नहीं लिखे गए, आगम अध्यात्म के लिए लिखे गए हैं। तो आगम लिखने का जो मोटिव है उनको तो हम समझे नहीं, और सिद्धांत के बाद बीच में ले आए हमारे को समझे नहीं। सिद्धांत सिद्धांत के कारण से है या सिद्धांत आत्महित
कोशिश तो करो, हाँ कर लीजिए कोशिश,
ज्ञान सामान्य का आविर्भाव है। बुद्धि में तो बात आ सकती है, इस समय साल की मुद्रा गाथा है, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने से ज्ञान विशेष का प्रभाव हो जाता है और नई दुष्टता मिल जाती है और साक्षात अनुभव होता है। बात तो विधि की सही है, लेकिन किसको कि जिसको स्वरूप लक्ष्य होता है उसको, ये सब्जेक्ट कंडीशन है, जिसको स्वरूप लक्ष्य नहीं है उसको ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। पर स्वरूप लक्ष्य जिसको किसको होता है कि जिसको ज्ञानी को परमात्मा के रूप में पहचान हुई हो उसको। इसलिए तो ब्रह्म का पत्र लिखा है आत्मशुद्धि पर से, तीन संकेत वाला जो 751 नंबर का पत्र लिखा है उसमें कहते हैं कि पहला प्रथम संकेत इस तरह से आएगा, स्वच्छंद मत आग्रंथ दी वर्ते सदगुरु लक्ष्य संकेत तेरे बाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष। वो पहला संकेत आता है जो सदगुरु की पहचान वाला होता है, वचन की प्रतीति आज्ञा रुचि रूप और स्वच्छंद निरोध रूप। फिर बाद में स्वरूप की पहचान आती है कि जो परमात्मा की स्पष्ट अनुभव से प्रतीत होती है और बाद में निर्विकल्प परमार्थ समय दर्शन उत्पन्न होता है। ये क्रम से काम होता है, सीधी बुद्धि किसी को पकती है ऐसा बनता नहीं है। कई लोगों के लिए प्रश्न है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा रूप विराजमान है, पर ये बात आजकल प्रसिद्ध हो गई है, पर अग्निमति वही कहते हैं कि आत्मा ऐसा परमात्मा है उनको अग्निमत न भी आता है इसलिए आत्मा में लीन रहेगा। सेल्फ रियलाइजेशन करो आता है कि नहीं आता है, ध्यान करो समाधि लगाओ वैसा करो वैसा करो, लेकिन जो बड़ा अंधा पड़ा है वो तो आड़ा हुए बिना कभी सीधा हुआ है, हो सकता है क्या? कोई मशीनरी है इसकी ऐसी? जो अंधा पड़ा है वो तो पानी भरने के लिए तो सीधा करना पड़ेगा, अंधा घड़े में तो पानी भरता नहीं, ना आड़े घड़े में पानी भराया जाता है। और सीधा घड़े में पानी भरना है और आड़ा तो हमें करना नहीं है, पागल हो गए? उन्हें घड़े को आड़ा के बिना सीधा करना है तो सीधा करना ही नहीं है उसको, या तो सीधा करने के बाद कल्पना में है वास्तविकता में वो चलता नहीं है। तो हमें ज्ञान करना है लेकिन काल्पनिक ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने से आत्म साक्षात्कार अवश्य होता है, लेकिन वो कल्पित ज्ञान से नहीं होता है, ऐसा कल्पित ज्ञान से वो नहीं होता है, वास्तविक ज्ञान से ऐसा होता है और इसकी वास्तविकता ही है, वरना वो ज्ञान कल्पित है, भले से ही दिखता है फिर भी वो कल्पित है। क्या कहते हैं कि ज्ञानी तो परमात्मा ही है और इसकी पहचान बिना परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, किसी को नहीं हुई है। इसलिए सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा उसकी उसको नमस्कार आदि से नमस्कार आदि भक्ति से लेकर पराभक्ति का अंत तक एक तरह से आराधन करना ऐसा शास्त्र लक्ष्य है, ऐसा शास्त्र का कहने का आशय है। क्या कहा कि इसलिए
ऐसा
प्रत्यक्ष सर्वज्ञ पुरुष को भी संसार में विराजता हो, कोई कारण से, कोई विचार से, कोई अवलंबन से, सम्यक दृष्टि रूप पड़े भी पहचाना नहीं हो तो उसका आत्म प्रत्यय कोई फल नहीं आता। परमार्थ से तो उसकी सेवा करो या नहीं करो, उसकी पूजा करो या नहीं करो, जीव को कुछ फर्क पड़ता नहीं। देखिए हम भगवान की पूजा रूप करने को जाते हैं, यह पर्व के दिनों में तो बहुत करते हैं, तो ये पूजा करो नहीं करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर उनको सर्वज्ञ सम्यक दृष्टि के रूप में नहीं पहचाना तो ये पूजा करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बहुत प्रज्ञा को कुछ सफल कारण रूप से ज्ञानी पुरुष ने स्वीकार नहीं किया है, ऐसा जानने में आता है। तो ये पहचान करने का यही मुद्दा है कि सम्यक पहचान, बिना सम्यक की पहचान तो ज्ञानी पहचाना जाता है, नहीं पहचाना जाता है, न तीर्थंकर देव भी पहचाना, जिनेन्द्र देव भी पहचाना जाता है। और बिना पहचान इसकी सेवा करो नहीं करो कोई फर्क पड़ता। इसलिए सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य, सर्व प्रकार से भक्ति के नवदा भक्ति होती है, भगवान की भी नवदा भक्ति होती है, मुनिराज की भी नवदा भक्ति होती है, लेकिन ज्ञानी की नवदा भक्ति होती है वो बात प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? कि वो सामान्य मनुष्य के रूप में बाह्य जीवन जीते हुए देखने में आते हैं, इसलिए तो मुनि क्या देव को तो 34 तो अतिशय है, तो संसार में विराजमान है 34 अतिशय को, तो उनको मनु में तो जो भी इनके पास आते हैं परमात्मा के रूप में उसका भजन स्तुति पूजा वगैरह चलती है, वहां तो शंका होने की गुंजाइश भी नहीं है, फिर भी पहचान होना दूर की बात। तो उसकी तो नवदा भक्ति करते हैं, मुनिराज की भी नवदा भक्ति करते हैं, क्योंकि दिगंबर रामायण है तो मुनिराज को आहार देने में उसके पहले उसकी भक्ति की जाती है, फिर आहार देते हैं, उसका चरण धोते हैं, यहाँ से लेकर के उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उससे होता है तो नवदा भक्ति का प्रयोग के बाद आहार दान किया जाता है। तो कोई याचक नहीं है, वो घर पे जैसे कोई याचक आ जाता है उसको दे दो, ऐसा नहीं है। ये तो मुनि राज है, राजा के भी राजा है, राजा भी उसको नमन करता है, इंद्र भी उसको नमन करता है, राजा क्या है? तो मामूली व्यक्ति नहीं होती, पंच परमेश्वरी पद में विराजमान है, और गणधर देव भी उसको नमस्कार करते हैं, नमो, जो गणधर देव तो नमस्कार मंत्र बोलते हैं ना, तो एक सेकंड पहले सातवें स्थान में भावने की दशा में जो आए उसको गणधर देव भी नमस्कार करते हैं, भले ही दीक्षा में और ज्ञान में आगे बढ़े, लेकिन नमो लोहे सर्व साधना, नमो लोहे त्रिकाल करते सर्व साधना, तीनों काल में ऐसे कोई भी साधु होता है उसका बड़ा नमस्कार है। भगवान के साधु काल के हो गए लोक में कहीं भी विराजमान हमारा नमस्कार है, गणधर देव से नमस्कार करते हैं, तो उनको मामूली आदमी चलते हैं। यहाँ कहते सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य, नमस्कार आदि से लेकर के पराभक्ति का अंत अंत तक करने योग्य ऐसे देह धारी दिव्य पुरुष किस तरह से निकल गई समझ के होकर के निकल गई, आभास होकर के निकल गई। मूल बात यहां से है कि परमात्मा ही यही देहधारी रूप से हुआ है, ऐसा ज्ञानी पुरुष के प्रति जीव को बुद्धि होती है, अभिप्राय पैदा हो जाता है, तो उसको अभिप्राय प्रशांत भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभिप्राय होवे पर भक्ति नहीं होवे तो ममता नहीं। भक्ति तो एक ओरिएंटेड पोजिशन है जिसके पीछे एक अभिप्राय खड़ा हो गया है। अभिप्राय उत्पन्न होने से भक्ति होती ही है। और यह भक्ति क्रमशः पराभक्ति रूप होती है, और ये भक्ति बहुत बढ़ती है, चरम सीमा तक जाती है और वही आत्म साक्षात्कार को चढ़ा देती है, वही आत्म में लीनता कराती है। ये भक्ति आत्म में लीनता कराती है, ऐसे कहते हैं। इसलिए कहा कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो क्षण मात्र में मोक्ष को देने वाला है। भक्ति कोई ऐसा पदार्थ है कि क्षण मात्र में मोक्ष को देने वाला है। इस तरह से यहाँ की बात है, ये कोई गीत गाने की बात नहीं है कि हमने भजन गाया, स्तुति गाई या पद गाया, भजन पद गाते इसलिए भक्ति होगी, मुख्य उतनी सी बात नहीं है। वो मोक्ष देने का परम पदार्थ है, ऐसी बात होगी, ये बात है। इस विषय में श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में बहुत प्रकार, बहुत भेद प्रकाशित कर करके यही लक्ष्य की प्रशंसा की है। वहां यही लक्ष्य प्राप्त करी है, वहां तो कोई जानते नहीं, वहां तो वो परमात्मा दूसरे परमात्मा वो उसका धारण करते हैं, वो है वो है वो बात चल रही है कि भागवत लोग में लक्ष्य तो वही है। अधिज्ञा कहना ज्ञानी तीर्थंकर देव में लक्ष्य होने के लिए जैन दर्शन में भी, जैन संप्रदाय में भी पंच परमेष्टी मंत्र में नमो अरिहंतां पद के बाद सिद्ध को नमस्कार किया है। ये अनादिकुल मंत्र है हमारा, इसलिए इस बात का प्रतिपादन करना और स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि कोई ऐसी बात ले जाते हैं उल्टी कि आप ज्ञानी को परमात्मा कहेंगे तो तीर्थंकर जिनेन्द्र देव का भय भी नहीं हो जाएगा, इसका क्या है? प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परमोक्ष देव का बाद में जिनेन्द्र देव को लिया तो क्या इसका एविडेंस यही होता है क्या? तो ये नमो सुधारण बोलते हो तब ये बात क्यों नहीं आपके लक्ष्य में आई? अरियंत पद तो नीचे वाला है और शीर्ष पद तो ऊंचे वाला है, तो नीचे वाले पद को पहले नमस्कार क्यों किया और ऊंचे वाले को पीछे रखा? तो है भी नहीं हुआ कि नहीं हुआ शीर्ष भगवान का? इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है, वो रहस्य प्रत्यक्ष स्वरूप वाले बात का है। अरियंत प्रत्यक्ष मिलते हैं, सिद्ध करके किसी को प्रत्यक्ष मिलते नहीं है। प्रहलाद तो प्रत्यक्ष होता है, प्रयोजन तो प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, तो बात तो अपने मतलब की है, उसका निषेध क्यों करते हो? मतलब ही ने मतलब की बात कही है, तुम भी मतलब अगर अपना कल्याण करना चाह रहा है वही अपना मतलब हो तो ये तो अनादेश है, मूल मंत्र तो अनादेश है, लेकिन इसके पीछे संकेत है कि प्रत्यक्ष के मिले बिना किसी को ज्ञान अनुभूति नहीं, प्रत्यक्ष से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। अनंत सिद्ध परोक्ष है, इससे किसी को ज्ञान प्राप्ति न हुई है न होने वाली भी है। ज्ञानी तीर्थंकर देव को देव में लक्ष्य होने के लिए ज्ञान प्रत्यक्ष सजीवन मुक्ति में लक्ष्य होने के लिए जैन में भी पंच परमेश्वरी मंत्र में नमो ज्ञानतां पद के बाद सिद्ध को नमस्कार किया है। यही भक्ति के लिए ऐसा सूचित करता है, यहाँ से हमें बोध मिलता है कि प्रथम ज्ञानी पुरुष की मुक्ति, यहाँ से हमको यही बोध मिलता है कि प्रथम जो प्रत्यक्ष ऐसे ज्ञानी पुरुष की मुक्ति, यही परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति का निदान है। तो लोग में निदान करते हैं मूल कारण रूट कॉज यही है कि परमात्मा की प्राप्ति करना हो या भक्ति करना हो तो मूल दान ज्ञानी की भक्ति में जाना होगा। इसके बिना किसी को न परमात्मा की भक्ति होगी न परमात्मा की भक्ति होगी न कोई इसकी प्राप्ति भी हो सकती है। नहीं पता इस तरह सुना ये जो एकदम प्रेरित विषय है ज्ञानी पुरुष की प्रत्यक्षता का उसका बहुत जोर से प्रतिपादन चला है।